Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب نے درود شریف پڑھ لیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی سچ کی سمجھ عطا فرمائیے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں برائی کی باطل کی جھوٹ کی سمجھ عطا فرمائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے ٹھیک ہے نا یہ دعا مانگ کر کے اب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹریڈیشنل سوال سے روایتی سوال سے کہ آخری کلاس میں ہم کہاں پہنچے تھے کیا کر رہے تھے کوئی نئے لوگ پرانے بچے تو جواب دیتے رہتے ہیں کوئی نئے بچے کیا کر رہے تھے ہم آخری کلاس میں کسی کو یاد ہے آخری ٹاپک کیا پڑھے تھے غزوہ بدر تو ختم ہو گیا تھا اور آخری کلاس میں ہم نے غزوہ بدر کے بعد کے واقعات پڑھنے شروع کیے تھے تو ان میں سے کیا کیا واقعات تھے آپ کچھ بتائیں نجد کے علاقے میں گئے تھے ٹھیک ہے آپ کچھ بتائیں برابر میں غطفان کا لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا آپ بتائیں ہاں ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے تو ایک موقع پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے اوس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے خزرج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس بوڑھے نے کیا نام تھا اس کا شاش نام تھا جیت تھا نا ان لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں تو اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ ان میں لڑائی کروا کر کے آؤ تو اس نے ایسی لڑائی کروائی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ تیار ہو گئے کہ بس اب ہتھیار لے کر آئیں گے اور جنگ شروع کرتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یاد دلایا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ تو مسلمان ہو چکے ہو تم لوگ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے اسلام سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر کے یہ لوگ فوراً رونا شروع ہو گئے اور توبہ کر لی اپنی اس غلطی سے معافی مانگی اور پھر سے جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ایک دوسرے کو گلے لگ گئے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے کافی ساری باتیں بھی کری تھی کہ صحابہ کی سب سے اچھی بات یہی تھی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے نا اس کا انکار نہیں کیا کرتے تھے لیکن اب ہم اس کے آگے ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو اسی کے اوپر بتانے والے ہیں ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا تھا اس کے اوپر مزید تفصیلات آئیں جی لڑائی کیسے کروائی تو وہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا آخری کلاس میں شاید آپ آ نہیں سکے تھے آخری کلاس اس نے آ کے ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں اس نے جو ہے نا وہ ان کو پرانی والی جنگیں یاد کروانی شروع کر دی کہ تم لوگ تو ایسے بہادر ہوا کرتے تھے ایسے لڑتے تھے آپ اس بارے میں کچھ بتانا چاہتے شعر و شاعری اس نے پرانی شعر و شاعری جو انہوں نے کری تھی نا اپنے جنگوں کے بارے میں بڑی بہادری کے واقعات وہ اشعار میں بیان کرتے تھے ان کے اشعار جو ہے نا آپ کو پتا ہے نا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا اس بات کو کہ ان کے اشعار اتنے یعنی جوش دلانے والے ہوتے تھے کہ انسان تو انسان ایک اور بھی مخلوق ہے اس کو بھی جوش آ جاتا تھا عربوں کے اشعار سن کر کے کس کو کون سا جانور اونٹ عربی کے اشعار جو ہے نا جب اونٹ سنتا ہے نا اونٹ رائٹ تو اونٹ بھی نا عرب کا ہی جانور ہے نا رائٹ تو اس کو عربی آتی ہے تو اونٹ جو ہوتا ہے نا وہ یعنی مست ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ مستی چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی کیفیات چڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اشعار کے اندر ایسی پاور ہوتی تھی کہ جانوروں تک کو جو ہے وہ ابھار لیتے تھے ٹھیک ہے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم بھی جب اردو کے اشعار کبھی سنتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی رونا آ جاتا ہے کبھی ہمیں جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے کبھی ہمیں جو ہے وہ بڑا جوش آ جاتا ہے ایون اردو کے اشعار کے اندر بھی حالانکہ وہ عربی زبان ہوتی بھی نہیں ہے ठीक है, तो अशार के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है. 200 पीपल हैव गॉन टू मदा मदीना मदा क्या 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 कह रहे हैं. अच्छा, तो हमने गजवाए अतफान के बारे में पढ़ लिया था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सॉरी गतफान के बारे में कि गतफान के इलाके में गए थे, वहां पे लड़ाई नहीं हुई थी, तो वो लोग बस इधर उधर भाग गए थे. फिर उसके बाद बारिश वाला मामला हुआ था, फिर बारिश में सबके कपड़े गीले हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ कपड़े जो ऊपर के कपड़े होते हैं उतार करके सुखाने के लिए रटकाए, तो उतनी देर में जो है ना वो एक काफिर आया आप सबको कतल करने के लिए, और आप सब लेटे हुए थे, उसने आकर के तलवार आप सब के सामने रखी और कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरी इस तलवार से. आप सब ने फरमाया अल्लाह. अल्लाह सुना, उधर से अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा. जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आकर के इसको एक पंच मारा, घूसा मारा इसके सीने के अंदर, ये जो है वो जमीन के ऊपर गिर पड़ा. ठीक है, हैरान रह गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया. ठीक है, तो अल्लाह के नाम में ताकत थी कि अल्लाह के नाम की वजह से फरिश्ते आते हैं ना, जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया, तो ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अल्लाह का नाम लिखा कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज करके इसको मूसा लगवा दिया. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली और पूछा अब तुमको कौन कौन बचाएगा मुझसे, हु इज गोइंग टू सेव यू फ्रॉम मी नाउ. तो इसके पास तो कोई अल्लाह की ताकत थी नहीं, इसके पास तो ईमान था नहीं, तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगा, आप बड़े करीम हैं, करीम की औलाद है, आप तो बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसको माफ कर दिया और ये मुसलमान भी हो गया उसी वक्त. ठीक है, तो ये हमने आखिरी बात पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी. इसके बाद एक और जो एक वाकया हुआ था वो दरअसल इस किताब के अंदर है नहीं, कहीं और पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम की मजीद दो शादियां भी हुई थी इसी अरसे में ना, इसी टाइम फ्रेम में नबी अलैहिस्सलाम की दो शादियां हुई थी और दोनों बीवियां जो थी ना जिनसे अब शादी हुई थी उन दोनों का नाम जैनब था. ठीक है ना, दोनों का नाम जैनब था, एक का नाम था जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी का नाम था जैनब बिनते खुजामा रजी अल्लाह ताला या खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा. ठीक है, तो इन दोनों से भी नबी अलैहिस्सलाम सलाम की शादी हुई थी. जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक बहुत मशहूर वाकया है. ठीक है, जैनब बिनते खुजैमा का भी यानी उनकी शादी हो गई लेकिन वो कोई बहुत बड़ा एक इवेंट नहीं था. एक बड़ा इवेंट जो था ना वो था हजरत जैनब बिनते जहश हजरत अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम सलाम की शादी. वो क्या था कि जैनब बिनते जहश हजरत अन्हा जो थी ना ये थी नबी अलैहिस्सलाम सलाम के खानदान की कुरैश की खातून. नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इनकी शादी अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा से कर दी थी. ठीक है, जिनको नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने अपना बेटा बना लिया था. क्यों बेटा बनाया था किसी को याद, जैनब ये जैद रजी अल्लाह को बेटा बनाने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हमने पढ़ा था. हाँ, जैद रजी अल्लाह जो थे ना वो किसी के वो थे तो एक बच्चे और आजाद नॉर्मल इंसानों की तरह रहते थे, लेकिन किसी ने ना उनको अगवा वगैरह करके गुलाम बना लिया था और गुलाम बना करके मक्का मुकर्रमा में लाके बेच दिया था. तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ना उन्होंने इनको खरीद लिया था और इनको जो है नबी अलैहिस्सलाम सलाम को हदिया कर दिया. ये नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास रहना शुरू हो गए और इतनी नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इनको मोहब्बत दी कि ये नबी अलैहिस्सलाम सलाम के गोया के बेटा बन के रहना शुरू हो गए. नबी अलैहिस्सलाम सलाम इनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे. ठीक है, इनके जो अब्बू थे वो तलाश करते रहते थे अपने बेटे को, तलाश करते रहते थे, मिलते नहीं थे. फिर आखिर तलाश करते करते इनके वालिद साहब जो थे ना अपने भाई के साथ मिल करके मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और वहां पे आकर के इन्होंने देखा कि जैद तो यहाँ पर है भाई. तो जैद को आकर के इनके अब्बू ने कहा, जैद आपकी जैद जैद को आकर के इनके अब्बू ने कहा कि जैद मैं आ गया हूँ, मैं आपका अब्बू आ गया हूँ राइट, चलो आप हमारे साथ चलो वापस अपने घर चलो. ठीक है, तो इन्होंने कहा मैं तो नहीं जाता भाई, मैं तो नहीं जाता. ठीक है, तो इन्होंने फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम से बात करी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मतलब आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इनसे कहें कि भाई ये मेरे साथ चले, ये मेरा बेटा है आखिर को. ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने कहा कि भाई मैं ना फैसला जैद पे छोड़ दूं, जैद जो भी फैसला करे। तो जब उन्होंने जैद से पूछा ना कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो बल्कि उन्होंने पहले नबी अलैहिस्सलाम से बात करी थी, फिर उसके बाद जो है वो जैद अल्तान से बात करी। तो जैद अल्तान उन्होंने कहा कि जी मैं इनको छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि इनका मैं अपने बाप और अपने चाचा के साथ वापस नहीं जाऊंगा। उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा था कि जैद जो है ना ये तो मेरा बेटा है, अपना बेटा बना लिया। तो काफिरों में मुशरिकीन मक्का में उस वक्त ये रिवायत होती थी कि अगर कोई किसी को अपना बेटा कह देता था ना, तो वो वाकई उसका बेटा बन जाता था। कैसे बन जाता था? वाकई का मतलब ये कि उसकी उससे रिश्तेदारी मान ली जाती थी कि बस ये इसका बेटा ही है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब इसका इंतकाल होगा, इस शख्स का इंतकाल होगा, तो इसकी जो विरासत होगी ना, इसकी जो जो, जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी, वो जिस तरह इसके सगे बेटों में तकसीम होगी, उसी तरीके से मुंह बोले बेटे में भी वो तकसीम होगी, उसको भी मिलेगा इसका हिस्सा। ठीक है, उसी तरीके से इसका मतलब ये भी होता था कि जी बेटे की जो बीवी होती है जिसको बहू कहते हैं, ठीक है, तो बहू जो होती है ना वो अपने ससुर के साथ महरम होती है, ससुर के साथ इसकी कभी भी शादी नहीं हो सकती। बहू की अपने ससुर के साथ, ससुर मतलब समझते हैं ना फादर एंड लॉ, तो डॉटर एंड लॉ की फादर एंड लॉ के साथ कभी भी शादी नहीं हो सकती। हत्ता कि अगर सन मर जाए फिर भी शादी नहीं हो सकती, अगर डिवोर्स हो जाए फिर भी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिस तरीके से अपनी डॉटर इन लॉ की अपने फादर इन लॉ के साथ कभी भी शादी नहीं हो सकती, उसी तरीके से जो मुंह बोला बेटा होता था ना, जिसको उन्होंने कह दिया कि मेरा बेटा है, तो उसकी बीवी से भी कभी भी शादी नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये काफिरों ने अपनी तरफ से ये एक ट्रेडिशन बना लिया था, हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। तो अल्लाह ताला ने ना इस गलत ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए क्या किया कि जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी हो गई सेपरेशन। और इनकी सेपरेशन होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद, अल्लाह ताला ने ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जहश जो थी ना, उनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम के साथ कर। और ये निकाह कहाँ हुआ था? मस्जिद नबी, मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा, कहाँ हुआ था ये उनका, किसी को पता है? मोहम्मद आसमान पर निकाह हुआ था, राइट? ये निकाह जो है ना जमीन पर हुआ ही नहीं था, ये निकाह जो है वो आसमान पर हुआ था। कैसे हुआ था? अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, बस। हु डिसाइड्स क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है? हु डिसाइड्स? अल्लाह। अल्लाह ताला फैसला करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी अकल से फैसला नहीं करते, हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बुनियाद पर फैसला नहीं करते कि मैं समझता हूँ कि ये चीज अच्छी है तो ये अच्छी है, मैं समझता हूँ कि ये चीज बुरी है तो ये बुरी है। मैं कौन करता है? बकरी, राइट? मैं जो है ना वो करती है बकरी, ठीक है ना। और बकरी के साथ क्या होता है? तो मैं करती रहती है हर वक्त। अभी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में रमजान आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद बकरी दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। तो जो मैं करती है, तो उसको फिर कसाई की छुरी के नीचे, राइट, कसाई की छुरी, और उसके बाद उसकी मैं खत्म हो जाती है। और जब मैं खत्म होती है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको खाल उतारते हैं उसकी, उसके बाद जो है ना उसकी जो है वो इंटेस्टाइन को खोलते हैं, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो पतली सी एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उस पतली सी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, उसको पुराने जमाने में क्या करते थे, उसको यूं करके स्ट्रेच करते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते थे ना, तो वो पतली सी जो है ना वो एक स्प्रिंग टाइप की चीज बन जाती, ठीक है। उस स्प्रिंग टाइप की चीज को एक मशीन के अंदर लगा देते थे, उस मशीन के अंदर कपड़े बनते थे, इट वॉज अ वीविंग मशीन, ठीक है। तो उस वीविंग मशीन के अंदर जब उस बकरी की इंटेस्टाइन को यूं स्ट्रेच करके इलास्टिक के तौर पे लगा देते थे ना, तो जब वो मशीन चलती थी ना, तो उसमें से कौन सी आवाज आती थी? तू 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 तू, उसमें से फिर तू 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 की आवाज आती थी। तो हमारे मशाइख ने कहा कि ये बकरी थी ना, मैं करती रहती थी हर वक्त, तो इसकी मैं को तू में तब्दील करने के लिए पर अल्लाह ताला ने इसको छुरी से कटवाया, और उसके बाद फिर इसकी आंतें निकलवाई, उसको मशीन में लगवाया, अब बेचारी करती है तू 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 तू, है ना। तो ऐ अल्लाह के बंदे, तू इतनी तकलीफों से गुजरने के बजाय खुद ही तू तू करना शुरू कर दे। तू तू का मतलब क्या? तू तो का मतलब ये नहीं है एक दूसरे से तू करके बात कर रहे हैं बदतमीजी के तरीके से, ओए तू क्या कर रहा है, ओए तू क्या कर रही है, तू तो का मतलब ये नहीं है, तू तो का मतलब ये है ए अल्लाह तू ही तू, बस ए अल्लाह बस आप ही आप हैं, जो आप कहेंगे वही करूंगा, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, राइट, मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है ना, आई एम नथिंग, राइट, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज विद यू, एवरीथिंग इज फ्रॉम यू, एवरीथिंग इज टू यू एंड फॉर यू, ठीक है, ये होता है तू तू असल में, ठीक है। बहरहाल क्या 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 कह रहे थे आप, इनकी तलाक क्यों हुई थी, इनकी तलाक इसलिए हुई थी कि ज़ैनब बिनत जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ना वो उनकी जरा थी बड़ी सी फैमिली है कुरैश की थी ना, और जो ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे उनका मामला ये था कि वो गुलाम थे, ठीक है, और वो जो है ना वो जरा अफ्रीका के साइड की तरफ के थे, तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी ना वो उनके जहन में इस वक्त एक बात आ गई थी, अब अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने काम करवाने होते हैं ना, तो काम जब करवाने होते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला दिल के अंदर ख्यालात पैदा कर देते हैं, ठीक है, तो वो ये काम करवाना था कि इस ट्रेडिशन को तोड़ना था और इस चीज को जो है अल्लाह ताला ने एस्टैब्लिश करना था, तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है ना वो एक इशू होता था कि भाई जैद और मेरा जो है ना ये कुफ नहीं है, यानी वो उनका खानदान बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा खानदान बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो इस वजह से ना इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था, ठीक है, तो ये चीज इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बिल आखिर जो है वो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको अलग कर दिया, तलाक दे दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तलाक की इजाजत तो दी है ना, ठीक है, कि अगर मामला बहुत खराब हो जाए और मामला आपस में ना चल, खराब सा मतलब ये नहीं कि अब आप एक दूसरे को भूसे मारना शुरू कर दें और जो है वो बर्तन उठा के फेंकना शुरू कर दें, ये तो इंसानों के दरमियान नहीं होता, ये तो किसी और किसी किस्म की चीजों में होता है, ठीक है, इंसानों के दरमियान तलाक खराब मामला का मामला ये होता है कि बस अब जो है ना वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अलोंग, राइट, अब आप एक साथ जो है वो अच्छे अंदाज से रह ही नहीं पा रहे, लड़ाई होती है तो बस खत्म ही नहीं हो, लड़ाई का मतलब आपस में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा, चला जा रहा है, तो भाई अब ज्यादा बेहतर ये है कि इस तरह की जिंदगी से बेहतर है कि अब आप अलग हो जाए और कहीं और शादी करते हैं, ठीक है ना, औरत की कहीं और शादी हो जाए, मर्द की कहीं और शादी, ठीक है, तो इस तरह से मामला पहले हो जाता था, लोग आपस में अलग हो जाते थे, अगर मामला इतना खराब हो जाए तो अलग हो जाते थे और फिर उसके बाद दूसरी शादी हो जाएगी, ठीक है, आज के दौर के अंदर ना दूसरी शादी होती है ना कुछ होता है, बस तो ऐसी मरते मारते सारी जिंदगी गुजारते, ठीक है, पहले ये सब कुछ नहीं होता था, तो इस तरह से ना इन लोगों की सेपरेशन हो गई और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ज़ैनब से शादी कर लीजिए और मैंने आपकी कर दिया शादी, ठीक है, तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद एक और वाकया, बड़ा वाकया आपके सवाल के बाद पूछ रहे आप जी, मर्द को 3 महीने की इद्दत पूरी करनी होती तो फिर मजे आते हैं नहीं, मर्द के लिए इद्दत नहीं होती, ठीक है, अच्छा उसकी वजह है लेकिन नहीं होती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया ये हुआ कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है ना एक और यहूदी था, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और ये जो था ना ये भी नबी अलैहिस्सलाम सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत गंदा किस्म का इंसान था, ये जो है जब इसको खबर मिली ना कि बदर में नबी अलैहिस्सलाम सलाम को फतह हो गई है और इतने सारे काफिर जो है वो मारे गए हैं, तो इसको बहुत सदमा हुआ, बहुत अफसोस हुआ और इसे कहना शुरू हो गया कि अब तो ना मर जाना ही बेहतर है, बेहतर होता कि मैं कब्र में चला जाता, जमीन के ऊपर रहने से बेहतर कब्र में चला जाना, इस तरह की बातें करना शुरू हो गया और इसने ना नबी अलैहिस्सलाम सलाम के बारे में खूब बुरी बुरी मंसूबे बनाने शुरू कर दिए, प्लानिंग शुरू कर दी, ये सफर करके मक्का मुकरमा चला गया और मक्का मुकरमा जाकर के वहां पे जो सरदार बाकी बच गए थे ना उन लोगों के, हजरत अबू सुफियान नजरतारान है ना, सफवान बिन उमैया, ये सारे बाद में मुसलमान हो गए, तो इन लोगों के पास जाकर के ना इसने खूब रोना धोना मचाया और खूब उन लोगों को तैयार किया कि तुम लोग जो है ना बस अपने इस शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये मदीना मुनव्वरा में ही एक यहूदियों का एरिया था, बहुत सारे मोहल्ले थे ना, छोटे छोटे टाउन यहूदियों के, तो उनमें से एक टाउन में ये रहता था। इंशाल्लाह एक मदीना मुनव्वरा का मैप भी आपको दिखाएंगे जिसके अंदर इस किस्म की जगहों का इंडिकेशन है। तो ये जो है ना मक्का मुकरमा आया और इसने लोगों से खूब बातें करी, खूब जोश दिलाया कि बदला लो अपना, बदला लो अपना। और एक दिन ना इसने सारे मुशरिकीन मक्का के सरदारों को इकट्ठा किया और हरम पहुंच गया, हरम लेकर के गया, और हरम ले जाकर के ना बैतुल्लाह का जो जो गलाफ होता है ना, गलाफ काबा, उसको पकड़ करके इसने, यानी पकड़ने का मकसद क्या कि जी हम अल्लाह के घर के कपड़े को पकड़ करके हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम मुसलमानों से जंग लड़ेंगे, ठीक है, वादा कर लिया सब सबके साथ वादा कर लिया, अब हम मुसलमानों को नहीं छोड़ें, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये आ गया मदीना मुनव्वरा वापस, और आकर के इसने जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी शेर कहने शुरू कर दिए, और इसने मुसलमान औरतों के बारे में भी ना गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर, ठीक है ना, मुसलमान औरतों के बारे में भी, ये बड़ा शायर था तो उनके बारे में भी शेर कहने शुरू कर दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, अच्छा एक और इसने हरकत करी कि इसने ना एक दफा इन इस एक्सट्रीम पर पहुंचने से पहले इसने ये क्या होगा कि इसने एक दफा दावत का इंतजार किया, ठीक है, फीस्ट, और इसमें नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया कि जी हमने दावत का इंतजाम किया, आप आइए हमारे साथ बैठ के खाना खाइए। लेकिन इसकी प्लानिंग ये थी कि ये नबी अलैहिस्सलाम को वहां पर कत्ल करवाना चाहता, ठीक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया कि ये दरअसल आपको मारना चाहता है, इस वजह से बुलाया। नबी अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चला, आप वहां से उठे और फौरन वहां से निकल गए, ठीक है। और ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई थी कि ये शेर भी कह रहा था, इसने कत्ल का भी मंसूबा बनाया और उसको एग्जीक्यूट भी करने वाला था। तो इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि काब बिन अशरफ को कौन मारेगा, कौन कत्ल करेगा, ठीक है। तो वहां पर जब आप सल्लम ने ये पूछा ना कि कौन इसको कत्ल करेगा, तो एक सहाबी थे हजरत मुहम्मद बिन सलमा रजी अल्लाह तआला, ये खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लम मैं ये काम करूँ, ठीक है जी।
उम्मे सलमा के बेटे,
उम्मे सलमा के बेटे मुहम्मद बिन सलमा, एक्चुअली सही पता नहीं, तो हाँ या ना दोनों में जवाब दे सकता, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि वो उतने उम्र के बड़े नहीं थे, ये तो बड़े उम्र के आदमी थे मोहम्मद बिन सलमा। तो ये खड़े हो गए और इन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अगर काब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए ना जरा इसको धोखा वोका देना चाहूँ, किसी तरह धोखे से इसको बाहर निकालू उसके घर से, क्योंकि ये एक जिस घर में रहता था ना बड़ा फोर्ट्रेस किस्म का घर था, बड़े इसके ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थरों से ना इसने एक तरह का किला बनाया हुआ था अपने घर को। तो अब किले के अंदर दाखिल होकर के इसको कत्ल करना आसान काम नहीं था, यानी बहुत यानी इम्पॉसिबल ही था तकरीबन ना। तो अब इसको वहां से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए इन्होंने आप सल्लम से इजाजत दी कि अगर मैं इससे कुछ गलत बयानी या कुछ धोखे वाला मामला करूं तो क्या मुझे इसकी इजाजत है। आप सल्लम ने फरमाया कि हाँ उसकी इजाजत है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक उसूल बता दिया है कि जब जंग होना किसी के साथ तो जंग के अंदर धोखा देना जायज होता है, अल-हर्ब खुदा, खुदा खुदा का मतलब होता है धोखा देना। तो व्हेन यू आर एक्चुअली इन वॉर, यानी कि भाई आप हर वक्त ही काफिर को धोखा, नहीं काफिर को धोखा नहीं दे सकते, आप काफिर से भी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन जंग की हालत में आप ये काम कर सकते, ठीक है। तो इसका भी मामला यही था कि इसने भी नबी अलैहिस्सलाम से हालत यानी ऐलान जंग कर दिया था, ठीक है। तो आप सल्लम ने मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को इजाजत दे दी। मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो काफी दिन सोचते रहे कि मैं कैसे मारूं, तरीका ही समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन ना मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अच्छा सॉरी आपने कुछ लिखा था, बट इफ देयर आर किड्स, बट इफ दे हैव किड्स देन व्हाट विल व्हाट हैपन टू किड्स, ये किड्स वाला सवाल कब उन्होंने किया,
तलाक के बाद,
if they have kids what will happen to kids, acha jab jo hai ha mashallah yani separation agar ho jayegi na to kids ke liye shariat ne baqaida usool bataye ki bacche jo hai wo kiske paas rahenge shuru mein शुरू में माँ के पास रहेंगे, लेकिन सर्टन एज तक जब वो पहुंच जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद वो बाप के पास आ जाएंगे। ठीक है। उस जमाने में असल में फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग होता था और ट्राइबल सिस्टम इतना स्ट्रांग होता था, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। ठीक है, कुरैश पूरा बड़ा सा कबीला था ना। ठीक है, तो अगर कोई सेपरेशन हो भी जाती थी ना, तो किड्स जो है ना, बच्चे जो होते थे, तो उनका ख्याल रखने के लिए पूरा का पूरा ट्राइब होता था। ठीक है, ट्राइबल वो बड़े होते थे, वो अपने कबीले के बच्चों का अच्छा ख्याल रखा करते थे। ठीक है। तो ना सिर्फ ये कि जब डिवोर्स हो जाती थी उसके बाद ख्याल रखते थे, बल्कि जंगों के अंदर भी तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे ना, तो उनके भी तो बच्चे फिर बगैर बाप के या बगैर माँ के बगैर तो ज्यादा नहीं होते थे, बाप के बगैर ज्यादा होते थे, उनका बहुत ख्याल रखा जाता था। जी, नबी अलैहिस्सलाम की अपनी एग्जाम्पल हमारे सामने है। आप के वालिद जो है वो आप की विलादत से पहले इंतकाल फरमा गए, वालदा भी इंतकाल फरमा गई, तो दादा ने ख्याल रखा और दादा के इंतकाल के बाद चचा ने ख्याल रखा। ठीक है। तो इन्होंने फिर बहुत सोचा, मोहम्मद बिन सलमान हजरत आला, उन्होंने इनको समझ में नहीं आई कि कैसे इसको मारा जाए। तो फिर एक दिन ये अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उन दोस्तों में ये जो काब बिन अशरफ था ना, इसका रजाई भाई भी था। ठीक है, यानी क्या कहते हैं, फॉस्टर ब्रदर। ठीक है, वो भी वहां पे मौजूद थे, उनका नाम था हजरत अबू नाइला। समान थे ये अबू नाइला रजतरान, और जो है दूसरे भी सहाबी थे, अबाद बिन बशर और हारिस बिन औस और अबू उबैस। ठीक है, ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने उनसे मशवरा किया कि भाई मैंने नबी अलैहिस्सलाम से वादा तो कर लिया कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कैसे मारूंगा। तो उस वक्त ना फिर अबू नाइला जो काब बिन अशरफ के रजाई भाई थे, उन्होंने भी मशवरा दिया कि हम सब मिलकर के इसको मारें, है ना, लेट्स कम अप विद अ प्लान। तो जब आपस में मशवरा किया तो फिर दे एग्रीड कि कैसे इसको मारा जाए। तो अब जो है ना, ये लोग उसके साथ एक नॉर्मल सी मुलाकात करने के लिए गए। ठीक है, विदाउट एनी swords और किसी चीज के, बस एक नॉर्मल बातचीत करने के लिए जैसे आप जाते हैं। तो ये लोग उससे मुलाकात करने के लिए गए और उससे कहा कि भाई ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, ये जो आदमी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसने जो है ना हमारा, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, नाक में दम करके रखा, नाउज बता। ठीक है, लेकिन इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत ले ली थी इस बात की कि हम उसके सामने कोई उल्टी बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप सबने इजाजत दे दी थी। ठीक है, तो अब इन्होंने ना उस इजाजत की वजह से ऐसी बात करी कि इन्होंने ना बहुत मुश्किल कर दी हमारे लिए, ये हमें हर वक्त कहते रहते हैं सदका दो, खैरात दो, इधर पैसे दो, उधर पैसे दो, हमारी जान मुसीबत में आ गई, हम फंस गए, क्या करें। ठीक है ना, तो वो जो है ना बड़ा खुश हुआ, हाँ यार ये तो वाकई है ना, ये तंग आकर के आए मेरे पास, कहता है तुम देखते जाओ अभी तो ये और तुम्हें तंग करेंगे, देखते जाओ अभी तो देखो आगे और क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि भाई असल में अब जो है ना हम तो फंस चुके हैं, हम तो इनके ऊपर जो है ना इनके फॉलोअर्स बन चुके हैं, तो अब ना इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, अब फंस गए ना, मतलब वी आर स्टक बेसिकली। ठीक है, तो अब ना इन्होंने जो हमें कहा है ना पैसे देने के लिए, तो हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो क्या तुम हमें थोड़ा कुछ खाने पीने की चीजें उधार में दे सकते हो, कि हमारे पास बहुत बुरे हालात हैं, राइट, तो तुम हमें कुछ गल्ला वल्ला अनाज कुछ खाने पीने की चीजें जरा हमें उधार में दे दो, हम तुम्हें बाद में लौटा देंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं तो कुछ तुम रखवाओ ना मेरे पास एज अ कोलेटरल, रहन के तौर पर कोई चीज रखवाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें उधार दूंगा। ठीक है, उधार की ये भी एक किस्म होती है, एक किस्म होती है कि भाई आप किसी से कहें कि मुझे आप 1,00,000 रुपए दे, 10,000 रियाल दे दें। ठीक है, तो वो आपसे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवा लें कि भाई हाँ ठीक है, आपने जो है वो मुझसे 1,00,000 रुपए लिए हैं, आप इतने अरसे में मुझे वापस कर देंगे, ये उधार की है। ठीक है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लिखवा लिया, डॉक्यूमेंट भी फर्ज नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्यूमेंट लिखवा लिया जाए। ठीक है, और आपने पैसे दे दिए। ठीक है, उधार की एक और किस्म ये होती है जिसको रहन रखना कहते हैं, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको कोई वादा करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जो चीज उधार में दे रहे हैं ना उसके बदले में उसकी कोई चीज अपने पास रखने कि भाई जब तुम मुझे उधार वापस करोगे तब मैं ये चीज भी तुम्हें वापस कर दूंगा जो तुमने मेरे पास रखवाई है, ठीक है। तो ये तरीका भी उस जमाने में राइज था, आज भी ये राइज है। तो इसने कहा इन लोगों से कि भाई तुम ऐसा करो, ये जो मैं तुम्हें खाने पीने की अनाज वगैरह दूंगा ना, तुम इसके बदले में मेरे पास जो है ना अपनी औरतें रहन रखो, अपने घर की औरतें जो है ना वो मेरे घर में छोड़। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बात, औरतें तुम्हारे घर में कैसे छोड़ दे, है ना, तुम तो यानी ये तो बड़ा माता, ये तो हमारी इज्जत के खिलाफ है, हमारी औरतें जो है वो तो किसी दूसरे के घर में आके रहना शुरू हो जाए, ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उसने कहा अच्छा तुम औरतें नहीं रख सकते मेरे घर में, तो तुम ऐसा करो अपने बेटे मेरे घर में रखो। जी बेटे मांग रहे हैं उसके बाद। तो उन्होंने कहा ये भी हम नहीं कर सकते भाई, इसलिए कि अगर बेटों को ना हमने रख दिया ना तो जब वो बड़े होंगे तो लोग उनको ताना दिया करेंगे कि तुम तो वही हो ना कि जिसको कि तुम्हारे बाप ने जो है ना वो थोड़े खाने पीने की चीजों के बदले में किसी दूसरे घर घर में रखवा दिया था, राइट। तो लोग ना हमारे बेटों को ताने दिया करेंगे तो हम अपने बेटे भी तुम्हारे घर पे नहीं रख सकते ना, जरा समझा करो बात को। तो फिर इन्होंने खुद ही कहा, मोहम्मद बिन सलमा वगैरह ने खुद ही उसको कहा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ना अपने हथियार तुम्हारे पास रहन रख देते, ठीक है, हम अपना एम्यूनेशन तुम्हारे पास रहन रख देते हैं, और तुम्हें पता है कि हमें अपनी एम्यूनेशन से कितनी मोहब्बत है और कितनी जरूरत रहती है हमें अपने तलवारों की। तो इस वेरी यानी औरतें बेशक यानी बहुत अहम चीज होती है, बेटे बहुत अहम चीज होते हैं, लेकिन हम उनको तो नहीं रहन रख सकते, लेकिन तलवारें और तीर कमान नेजे वगैरह ये भी बहुत अहम चीजें हैं हमारी, तो इनको हम तुम्हारे पास रहन रख सकते हैं। उसने कहा चलो ठीक है यार, कुछ नहीं रख सकते, चलो तलवार ही रखो मेरे पास रहन, ठीक है। तो ये तैयार हो गया, इसने अपने पास तलवारों को रख लिया और इन लोगों ने जो है वो इन लोगों को जो है ना वो खाने पीने की चीजें देनी। अब ये लोग जो है ना एक इन्होंने फिर प्लान बनाया कि एक रात को जो है ना ये इसके घर पे गए और ये अपने घर के अंदर सो रहा था, किले के दरवाजे वगैरह बंद हुए हुए थे, बाहर से इन्होंने आवाज दी मोहम्मद बिन सलमा ने कि भाई जरा बात सुनना, बाहर से आवाज देते ना वो काब, ठीक है। तो काब जो है ना जाहिर है अब तक जो है वो इन लोगों को अपना दोस्त समझना शुरू हो गया था, ठीक है, कि भाई ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, तो क्या कहते हैं उसको, एनिमी ऑफ द एनिमी इज योर फ्रेंड, राइट। तो अब क्योंकि ये उनके दुश्मन है तो इस वजह से मेरे दोस्त है, और इतने अच्छे से मुझसे बात बात करके गए, बाकायदा हमारे दरमियान बिजनेस डीलिंग हुई है, ठीक है। तो इसने जब आवाज सुनी ना तो इस ये अपनी बीवी के साथ जो है कमरे में था, इसने अपनी बीवी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त बुला रहे हैं। इसकी बीवी जो थी ना वो इसके दिल में एक अजीब ख्याल आया, उसने कहा कि नहीं ये जो मुझे आवाज आई है ना, मुझे इस आवाज से खून की बू आ रही है ना, ये तो गड़बड़ है कुछ। तो काब के दिमाग के ऊपर उसको सवार था, नहीं नहीं ये तो मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि मैं जाऊं उनसे आवाज का जवाब दूं। इसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मरना भी होगा ना तो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, शरीफ का मतलब था कि मैं बड़ा इज्जतदार आदमी, शरीफ तो ये था नहीं, जाहिर सी बातें थी, गंदी गंदी बातें क्या करता था, तो शरीफ का मतलब होता है इज्जत वाला, मैं इज्जत वाला हूँ, तो इज्जत वाले इंसान को तो जो भी बुलाए ना उसको जाना चाहिए। तो ये जो है ना वो बाहर निकला और उस वक्त जो था ना ये बहुत इसने परफ्यूम वगैरह अपने ऊपर लगाए हुए थे, बड़ा खुशबू वगैरह लगाई हुई, ठीक है। तो ये बाहर निकला ना तो इन लोगों ने इससे कहा कि भाई तुमने तो बड़ी खुशबू लगाई हुई है भाई आज, ठीक है। तो कहते हैं हाँ मेरे पास तो सबसे अच्छी खुशबू होती है, मेरी बीवी भी सबसे अच्छी बीवी है, पूरे अरब की सबसे हसीन औरत जो है ना वो मेरी बीवी है, ठीक है, और मेरे पास खुशबू भी सबसे बेहतरीन खुशबू हुआ करती है। तो मोहम्मद बिन सलमा ने कहा कि यार मुझे जरा अपना मार, तुमने अपने बालों में खुशबू लगाई हुई, मुझे जरा अपना सर तो संभाओ, ठीक है। तो उससे पहले मोहम्मद बिन सलमा ने बाकी अपने साथियों को कहा हुआ था कि देखो मैं जैसे ही इसके सर को पकड़ूंगा तुम उसका काम तमाम है, ठीक है। तो इसने कहा कि अच्छा हाँ तुम्हें मेरी खुशबू सुननी है, ठीक है, सर उसने झुका दिया, उन्होंने इसको पकड़ा, बालों को जोर से पकड़ा और उनके जो बाकी साथी थे उन्होंने इसका काम तमाम कर दिया, ठीक है। तो अब जो है ना उसके बाद ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट पहुंचे, उस वक्त जो है वो गालिबन फजर की नमाज का वक्त हो चुका था, बिल्कुल आखिरी शब का आखिरी वक्त था वो। تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا افلحت الوجود, کہ یہ جو چہرے آ رہے ہیں نا یہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں, یعنی دے ہیو اچیو دیئر گول, مقصد پورا کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے سنتے کے ساتھ ہی فرمایا کہ وجہ کا یا رسول اللہ, کہ اصل میں تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ ہے کامیاب چہرہ, اصل تو آپ کے چہرے کے ساتھ کامیابی ہے سارے کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب صبح ہوئی تو جو مدینہ منورہ کے باقی یہودی تھے ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو ہمارا ایک بڑا سردار جو ہے نا وہ اس طریقے سے مارا گیا ہے, تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, ہمارا تو ایک بڑا سردار تھا وہ جو ہے وہ ایسا مارا گیا. تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایسے اشعار کہا کرتا تھا, ایسی بد زبانی کیا کرتا تھا, اور اس نے جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کری. مکہ مکرمہ گیا تھا نا, وہاں پہ جا کے سب سے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرو. تو ان لوگوں کو یہ ساری باتیں پتا تھی کہ واقعی کعب بن اشرف نے یہ ساری حرکتیں کری ہیں, تو اس وجہ سے نا یہ کچھ آگے سے کہہ نہیں سکے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے غلط حرکتیں کری تھیں, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا نا نبی علیہ السلام سے کہ ہم ایسا نہیں کیا کریں گے, قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ آلریڈی ہو چکا تھا لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے. تو اب کعب بن اشرف کے ساتھ جب ایسا ہو گیا تو اس سے جو ہے نا یہ سارے کے سارے فور دا ٹائم بینگ ڈر گئے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس قسم کی حرکتیں کرنے سے فور دا ٹائم بینگ توبہ کر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ واقعہ تھا سیرت کے اندر. جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے.
پتا نہیں ہے کچھ ہو گیا.
اسی طرح کی پھر دو تین اور بھی واقعات کو, ایک اور بھی شخص ایسی کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے خلاف, تو ایک اور صحابی نے جو ہے نا وہ اس کو بھی جا کر کے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سریا ہوا کہ جس میں ابو سفیان نے مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلے کو شام بھیجا نا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ بدر کا واقعہ پیش آ چکا تھا شام کے راستے کے اوپر, اب ان لوگوں کو ڈر لگ گیا تھا کہ اگر اسی پرانے راستے سے ہمارا قافلہ جائے گا نا تو کہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹیک نہ کر دیں اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ اس کو نقصان نہ ہو جائے. تو اب کی بار جو ہے نا اس نے اس ٹریڈیشنل روٹ کی بجائے اس نے عراق کے روٹ سے, یعنی یوں جا کر کے اوپر سے جا کر کے جانے کی کوشش کری, ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ السلام کو اس کا بھی پتا چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ 100 لوگ بھیجے یا 200 لوگ بھیجے, اور انہوں نے جا کر کے, ہاں, 100 صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور وہاں پہ جا کر کے ان لوگوں نے اس قافلے کے اوپر قبضہ کیا. لوگ تو سارے کے سارے بھاگ گئے لیکن سارا سامان جو تھا نا اس قافلے کا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا, اور اچھا خاصا اس کے اندر 1,00,000 درہم 100,000 درہمز کے ایکول جو ہے وہ مال اسباب تھا, اس کو لے کر کے یہ سارا یہ جو مجاہدین تھے یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے. مسلمانوں کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم کون سے والے سال میں چل رہے ہیں؟ جی ہم لوگ کس کا واقعہ؟ ابو العصر کا واقعہ, ابو العاص کا واقعہ. ابو العاص کا واقعہ اس سے پہلے ایک دوسرے قافلے کے ساتھ ہو چکا تھا. وہ جو قافلہ تھا وہ یہی والا قافلہ تھا؟ نہیں, وہ لگتا ہے کیونکہ اس کا واقعہ ہم نے الگ پڑھا ہے نا لاسٹ کلاس میں, ٹھیک ہے, تو بٹ اٹس پاسبل کہ دونوں ایک ہی بات, کیونکہ وہ یہ جو تھا نا یہ بدر کے بعد یہ پہلا قافلہ نکلا تھا نا, اور ابو العاص کو بھی اسی قافلے, کنفرم نہیں ہے لیکن اٹس میکنگ دی لاٹ آف سینس کہ دیز ور بوتھ دی سیم, ٹھیک ہے. تو یہاں سے جب سارے لوگ بھاگ گئے تو ابو العاص بھی بھاگے تھے, ٹھیک ہے, تو ابو العاص جو ہے نا بھاگ کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے, اور انہوں نے آ کر کے کس کے پاس پناہ لی تھی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی, ان کے پاس انہوں نے پناہ لی تھی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے بھی دی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سارے واقعات جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, ہم کون سے سال میں؟ 3rd ہجری کے اندر, رائٹ. 2 ہجری کے اندر بدر کا واقعہ ہو گیا تھا, اور رمضان المبارک کے بعد ذی قعدہ ہوا, قبیلہ بنو قینقاع کا جو ہے وہ غزوہ ہوا, اور پھر ذوالحجہ کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. پھر اس کے بعد پھر ہم نے جو غزوہ غطفان پڑھا تھا وہ سفر کے مہینے میں جا کے ختم ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھرڈ ہجری چل رہی ہے. تھرڈ ہجری کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ, وہ انشاءاللہ سب کو ہی پتا ہوگا کون سا بہت بڑا واقعہ تھرڈ ہجری کے اندر ہوا, غزوہ احد کا واقعہ. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ کیوں ہوا, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ شدید غصے میں تھے, رائٹ, دے وار ایکسٹریملی فرسٹریٹڈ, اور وہ مستقل جو ہے نا وہ اسی چکر میں تھے کہ کیسے بدلہ رہے. باقی جو تھے نا مکہ مکرمہ کے لوگ وہ تو صبر وبر کر کے بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ کہ جن کا کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا بدر کے اندر, ٹھیک ہے نا, کسی کا بیٹا مارا گیا تھا, کسی کا باپ مارا گیا تھا, کسی کا بھائی مارا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو تھے نا یہ چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی آپس میں, ایک دوسرے سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بدر کا جو غزوہ ہوا تھا وہ کس قافلے کے اراؤنڈ تھا, وہی تجارتی قافلہ جو ابو سفیان جو ہے وہ شام سے لے کر کے واپس آ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو تجارتی قافلہ یہ واپس لے کر کے آئے نا تو بدر میں لڑائی وڑائی ہو گئی اور 70 جو مشرکین تھے وہ تو وہاں مارے گئے. ٹھیک ہے, تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ بھائی جو کچھ وہ لے کر کے آئے تھے نا وہ سارا کا سارا انہوں نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اور اس قافلے کے اوپر جو ان کو پروفٹ ہوا تھا نا 50,000 dirhams, رائٹ, اچھا خاصا بڑا ان کو پروفٹ ہوا تھا, 50,000 dinar, درہمز نہیں دینار. تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی یہ جو 50,000 dinar ہمیں پروفٹ ہوا ہے نا اس والے قافلے پر جو قافلہ بچ بچا کے آ گیا تھا مکہ مکرمہ, ہم اس 50,000 dinar سے نیکسٹ وار کو فائنانس کریں گے. جو ہماری نیکسٹ وار ہوگی نا جس کے لیے ہم نے ابھی قسمیں کھائی ہیں, وعدے کیے ہیں, کعبہ اشرف سے بھی وعدے کیے ہیں, کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے, اس وار کو ہم فائنانس کریں گے. بیکاز یو نیڈ منی فار وار, کیوں پیسوں سے لڑتے ہیں؟ ہتھیار خریدنے کے لیے, اور ہتھیار خریدنے کے لیے, رائٹ, یعنی درہم اور دینار جو ہے نا وہ مارتے نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوائنز مارنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ یو نیڈ منی ٹو بائی ناٹ جسٹ ایمیونیشن, صرف ہتھیار خریدنے کے لیے نہیں بلکہ اور بھی تو چیزیں, بھائی کھائیں گے کیا, بھوکے پیٹ کو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کھانے کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے نا, رائٹ, آپ کو جو ہے وہ جانور چاہیے آپ کو, یعنی وہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے کر کے جاتے تھے, اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور اس کو پورا کا پورا لشکر کھاتا تھا, تو بھائی اونٹ کو بھی تو فائنانس کرنے کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر کے وہ جاسوسی بھی کرواتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کسی قبیلے کا بندہ ہے اس سے بات کری کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ جا کر کے ہماری طرف سے جاسوسی کریں, تو بھائی فار واٹ, کیوں کروں میں آپ کی طرف سے جاسوسی, رائٹ, ہر بندہ ایسی فری میں تیار نہیں ہو جاتا نا, تو اس کو پھر پیسے دینے ہوتے تھے کہ ابھی تمہیں ہم یہ پیسے دے رہے ہیں, تم ہمارے پیسے دے کر کے ہماری طرف سے جاسوسی کر کے آؤ, ہمیں بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ 50,000 dirhams جو ہے نا, دینار جو ہے نا, ان کو ہم نیکسٹ وار کے لیے. تو اب اس کے بعد انہوں نے اپنا لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا اور 3,000 آدمی جمع کر, ٹھیک ہے, 3,000 بندے جمع کر دیے. اور انہوں نے ایک اور خاص بات یہ کری کہ اس میں صرف مرد نہیں گئے اس وار کے لیے, یہ صرف بندے لے کر کے نہیں آئے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 15 بندیاں بھی لے کر کے آئے, عورتیں بھی لے کر کے آئے. ٹھیک ہے نا, ان عورتوں کو وہ کیوں لے کر کے آئے تھے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ عورتیں جو ہے نا یہ شیر پڑھا کریں گی اور ہمارے مردوں کو جو ہے نا وہ جوش اور جذبہ دلایا کریں گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ریزن تھی کہ یہ شیر پڑھ کے اور پیچھے سے, اچھا اگر وہ لوگ کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا نا میدان جنگ سے, تو عورتیں نا پیچھے سے اس کو جوتیاں مارا کریں گی, اوے بدمعاش ڈرپوک انسان بھاگ رہا ہے مارو اس کو, ہے نا, تو عورتوں کے ڈر کی وجہ سے ہے نا بہت سارے کام ابو کا نہیں کرنا چاہتے امی کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں نا, دیکھتے ہیں آپ لوگ گھروں کے اندر, تو امیوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی نہیں خام خواہ کے, تو امی کے بعد اچھی خاصی پاور ہوتی ہے, तो करना पड़ जाता है उसके बाद। ठीक है, तो इसी वजह से एक तो ये था कि भाई जब वो कोई डर के भागना चाहेगा ना तो पीछे दौड़ते उसको और उल्टा सीधा बुरा भला कहेंगे, वो डरपोक इंसान भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो वो फिर उसको मजबूरन जा करके लड़ना पड़ेगा। और एक और भी बात ये कि अगर हमारा लश्कर हारना शुरू हो जाएगा ना, डिफीटेड, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना हमारे मर्दों को इस बात की कम से कम फिक्र रहेगी कि अगर मुसलमान जो है वो जीत गए तो वो फिर हमारी औरतों को भी पकड़ लेंगे, और हमारी औरतों के साथ पता नहीं फिर उसके बाद क्या होगा, क्या शुरू होगा, उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो हमारे मर्द जो है आखिरी दम तक लड़ते रहे औरतों की हिफाजत, क्योंकि आपको पहले बताया था ना कि औरतों की जो इज्जतदार औरतें होती थी, घरेलू औरतें होती थी, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी इस मुआशरे के अंदर। जो बिल्कुल ही बेइज्जत किस्म की औरतें होती थी उनकी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती थी, लेकिन घर की औरतें जो होती थी ना बहुत इज्जतदार होती थी और उनकी ये लोग बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई औरतों का होना जो है ना उससे हमें बहुत सारे फायदे हो। तो ये 15 खास, अच्छा ये 15 औरतें जो गई थी ये बड़ी इज्जत वाली यानी इन सरदारों की बीवियां थी, अबू सुफियान की बीवी थी ना, क्या नाम था उनका जी को याद है, हमारे तो जहन से भी निकल गया था, हिंदा। हिंदा जो थी वो सरदार कुरैश की वाइफ थी ना, राइट, बाद में जाके वो मुसलमान हो गई थी, उस वक्त उन्होंने जो किया था बहुत ही बुरी बात करी थी उन्होंने। तो ऐसी औरतों को लेकर के गए और साथ साथ इनके पास 700 जो बंदे थे ना 3,000 में से, वो बिल्कुल आयरन क्लैड थे, बड़े लोहे की जरहे पहने हुए थे, 200 इनके पास घोड़े थे, 3,000 ऊंट थे, 3,000 बंदे 3,000 ऊंट, 200 घोड़े भी थे। तो ऊंटों का काम जो था वो खाने के लिए भी, खाली बैठ करके सफर करने के लिए ऊँट होते थे, बल्कि उनको खाया भी जाता था। वैसे तो घोड़ों को भी उस जमाने में, घोड़े भी मुसलमानों के लिए भी हलाल, ठीक है, घोड़ों को जो है वो गज़वाए खैबर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब घोड़ों को हम नहीं खा सकते, उसके बाद से घोड़े हराम हुए मुसलमानों के लिए। तो घोड़ों को तो मुसलमान भी पहले खाते थे और काफिर भी घोड़ों को पहले खाते। तो खैर 200 घोड़े थे और 3,000 ऊंट थे और 15 औरतें इनके साथ थी। ये लश्कर जो है वो 5 शवाल 3 हिजरी को मक्का मुकरमा से रवाना हुआ। शवाल का महीना यानी 3 हिजरी जो है वो का जो 10वां महीना, शवाल इज द 10th। अब इसके बाद जो है ना जो बाकी तफसीलात हैं वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो बेसिकली ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम को इस लश्कर का इल्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया। ठीक है, लश्कर का इल्म कैसे हुआ ये छोटी सी बात है तो अभी कर लेते हैं कि अब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के जो चचा थे, बदर के अंदर वो कैद हो गए थे और उनका फिदिया लेके नबी अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा था। ठीक है, उस मौके पर अब्बास रजी अल्लाह ताला जो है वो मुसलमान हो गए थे, कामों के मुताबिक यही पता चलता है अब्बास रजी अल्लाह ताला मुसलमान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने इस्लाम को डिस्क्लोज नहीं किया, मक्का मुकरमा में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो अब्बास रजी अल्लाह ताला को जब इस लश्कर का पता चला ना तो उन्होंने फिर एक बंदे को खत दे करके रवाना किया। वो बंदा बहुत तेजी से सफर करता हुआ 3 दिन के अंदर मदीना मुनव्वरा पहुंचा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कुबा के मुकाम पर थे। उस बंदे ने ला करके वहां पर इस आपसे को खत दिया तो आपस में पता चला कि उन लोगों ने नेक्स्ट एक्सपेडिशन की जो है वो सारी तैयारी कर ली है और वो लोग रवाना हो चुके। जब पता चला कि रवाना हो चुके हैं तो उस वक्त तक जो है ना ये लोग तकरीबन ओहद तक पहुंच चुके और वहां पे आकर के इन्होंने अपनी कैंप्स वगैरह जो है ना वो डाल दिए थे यानी कैंपिंग कर लिए थे। ठीक है, तो बाकी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगर किसी को कोई ऑनलाइन या ऑनलाइन सवाल की शायद हो तो आप कह रहे थे घोड़ा क्यों हराम, क्यों होता है भाई हराम, क्योंकि जंग में इस्तेमाल होता है, अब तो नहीं होता
उस दौर में क्या था।
उस दौर में, बट इफ दे हैव किड्स देन अच्छी तो फिर भी सही। और कोई ऊंट भी जंग में इस्तेमाल होता है, हाँ वैसे ऊंट भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे जो जो नजद के लोग हैं ना वो ज्यादातर ऊंटों के ऊपर सफाई करते हैं। खैर ऊंट भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन घोड़े जो है वो सबसे ज्यादा घोड़ा ही इस्तेमाल, ठीक है। तो क्यों हराम, उसकी जो जवाब है ना वो पिछले दिनों भी किसी ने सवाल किया था, एक गधा, गधा जो है वो हलाल है कि हराम है, गधा तो हराम है, तो गधा भी तो घोड़े जैसा होता है, घोड़ा तो हलाल था तो गधा भी हलाल होना चाहिए, तो गधे का गोश्त जो है वो जो हमारे यहाँ मिलता है तो बिल्कुल तो सही मिलता है, कोई मसला नहीं। खैर इस किस्म की बातें करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। सीधे से जवाब है इसका, और वही एक जवाब है इसका, ठीक है, के अल्लाह ताला ने कह दिया सो कह दिया, ठीक है ना। क्यों कहा ये हमारे जरूरी नहीं है कि हमें समझ, ठीक है ना। अगर आ गया तो अच्छी बात है भी आ गया आपको समझ में, नहीं आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ने कह दिया तो हो गया, ठीक है ना, यही एक जवाब है इसका, ठीक है। चलो आखिर दावाना अलहमदुल्लाह।
Recording stopped.